ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक 4। अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार। श्लोक हमारे पीछे पीछे दोहराइए। तमहा भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणा स्त्रियम मा हन्तुम अर्हसि। तमहा भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणा स्त्रियम मा हन्तुम अर्हसि। तमहा भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणा स्त्रियम मा हन्तुम अर्हसि। तमहा भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याणा स्त्रियम मा हन्तुम अर्हसि। दोहराइए। तमहा भ्रातरम देवी कृपणा स्त्रियम मा हन्तुम अर्हसि। धन्यवाद। शब्द अर्थ एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की। हमारे पीछे पीछे दोहराइए। तमहा कंस से आहा कहा भ्रातरम अपने भाई देवी माता देवकी ने कृपणा असहाय करुणम कातार सती सती स्नुषायम तव। यह शिशु तुम्हारी भावी पुत्र वधु बनेगी। कल्याण हे शुभ स्त्रियम स्त्री को माँ नहीं हन्तुम वध करना अर्हसि तुम्हें शोभा देता है। असहाय तथा कातार भाव से देवकी ने कंस से विनती की मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो तुम इस बालिका को मत मारो यह तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। तात्पर्य इस प्रकार से है। इसके पूर्व कंस ने यह सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो। किंतु अब यही कंस माया के प्रभाव से स्त्री को न केवल स्त्री वरन नवजात असहाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था। देवकी अपने भाई को इस पाप पूर्ण जघन्य कृत्य से बचाना चाह रही थी। अतएव उन्होंने उससे कहा तुम कन्या को मारने का निशंसता पूर्ण पाप मत करो तुम्हारा कल्याण हो। असुर जन अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थी और अपने पुत्र कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, किंतु वे पराई कन्या को बचाने के लिए चिंतित थी, यह उनके लिए स्वाभाविक ही था। ओम अज्ञान। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। तो कक्षा को आरंभ करने से पहले मैं विशेष रूप से वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ और सभी उपस्थित भक्तवृंद से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं भगवान का गुणगान कर पाऊँ, अपने मुख से जिन शब्दों का प्रयोग करूँ उनसे मेरा शुद्धिकरण हो, आप सबको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो और हम सब मिलकर कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएं। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक, इसका मैं अर्थ एक बार फिर से पढ़ता हूँ। असाय तथा कातार भाव से देवकी ने कंस से विनती की। कातर धन्यवाद। असाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्रवधु बनेगी, तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब पिछले कुछ समय से सुनते आ रहे होंगे, अभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, अभी वही दिन चल रहा है, एक तरीके से रात चल रही है। अगर जन्माष्टमी को देखें तो काफी दिन बीत गए, लेकिन भागवतम में हम ये प्रसंग पढ़ रहे हैं और शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी। परीक्षित महाराज के साथ चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी उनसे चर्चा कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज उनको कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में पूर्ण रूप से या डिटेल में सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी डिटेल में बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से देवकी का वसुदेव से विवाह, उस दिन से वो कथा शुरू करते हैं कि विवाह हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसमें सबसे ज़्यादा जो खुश व्यक्ति था या बहुत ज़्यादा एक्स्टैटिक था, पूरा होश पूरे जोशों में अपनी बहन की शादी में पार्टिसिपेट करा था पूरे उत्साह के साथ, वो कंस उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि अपनी छोटी बहन के विवाह में भाइयों को खुशी होना बहुत स्वाभाविक ही है और कंस को भी बहुत खुशी थी कि उनकी छोटी बहन का विवाह वसुदेव से हो रहा है। इतनी खुशी थी कि उसने, जैसा कि प्रथा है कि भाई जाता है मायके से ससुराल तक अपनी बहन को विदा करने के लिए, तो कंस ने भी इस मौके का पूरा प्रयोग किया। किस प्रकार से उसने रथ को खुद ही, यहाँ का एक राजकुमार होते हुए भी, राजकुमार जनरली कोई आम बात नहीं है कि गाड़ी को ड्राइविंग करना, रथ को हाँकना, लेकिन कंस ने, क्योंकि देवकी के पति प्रति उसका बहुत स्नेह था, इस कारण से उसने को दर्शाते हुए, उसने को प्रकट करते हुए उसने रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ली और उनको देवकी के मायके से देवकी के ससुराल की तरफ ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी में बताया गया कि मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, जिस देवकी को तुम लेकर जा रहे हो उसी का आठवां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारा वध कर देगा। और जैसे ही कंस ने इस बात को सुना, पूरा का पूरा उसका व्यवहार बदल गया। तुरंत ही उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली और देवकी को मारना चाहता था। वसुदेव जी ने थोड़ा प्रयास किया और उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया, किसी तरह से मामले को उन्होंने हैंडल किया और कंस ने उस समय देवकी का वध नहीं किया। लेकिन बाद में, जैसे कि कथा चलती है, बाद में नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कंस को बताया कि किसी भी, कोई भी पुत्र आठवां पुत्र हो सकता है। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और कारागार में ही वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्रों को जन्म किया। पहले 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए, 7वां पुत्र बलराम जी जो कि रोहिणी के गर्भ में जिनका ट्रांसफर हुआ और जिनका प्राकट्य रोहिणी के गर्भ से हुआ, श्री श्री राधा राधिकरमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। और फिर देवकी का आठवां पुत्र हुआ और आठवां पुत्र भगवान वह भगवान थे स्वयं। भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया कि आप जाइए और गोकुल में जाकर यशोदा के घर मेरे को लेकर जाइए। और वहां जाकर वसुदेव ने भगवान के निर्देशों का पालन किया, वहां गए, अपने पुत्र को यशोदा के नजदीक रख दिया और यशोदा की पुत्री को अपने साथ लेकर आ गए। और फिर यह अध्याय जो शुरू होता है राजा कंस के अत्याचार, जब वसुदेव वापिस आ जाते हैं कारागार के अंदर और देवकी के समक्ष उस पुत्री को लेटा देते हैं, तब यहां से ये अध्याय शुरू होता है कि तब वह बालिका या लड़की रोने लगती है। उनके रोने की आवाज सुनकर सारे सिपाही जो कि बेहोश हो गए थे या एक गहरी निद्रा में सो गए थे, वे उठ जाते हैं और जाकर ये खबर कंस को देते हैं। कंस तुरंत उसी अवस्था में, इससे पहले के श्लोक में बताया कि उसी अवस्था में, उद्विग्न अवस्था में, जिस और ऐसी अवस्था में जिसमें उसके सिर के बाल बिखरे हुए भी हैं, क्योंकि वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर शिशु ने जन्म लिया था, क्योंकि उसको क्या लगता है कि आज मेरे पास मौका है कि जो मेरी मृत्यु बनने वाला है आज मैं उसको मृत्यु के घाट उतार सकता हूं। लेकिन वह तो एक लड़की थी, एक बालिका थी, और उसको मारने का प्रयास कर रहा होता है। तब माता देवकी कंस से यह प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्रवधु बनेगी, तुम्हें शोभा नहीं देता, इस एक कन्या का वध करो। लेकिन कंस उनकी बात ज्यादा सुनता नहीं है, आगे जैसे वर्णन आएगा तो, और मारने का प्रयास करता है। लेकिन यहां पर हम जो चरित्र देखते हैं, चरित्र हमको देखने को मिलता है, वो देवकी और कंस के दो अलग अलग चरित्र हैं। किस प्रकार से कंस बहुत खुश था क्योंकि उसकी छोटी बहन का विवाह हो रहा था, लेकिन एक आकाशवाणी हुई और उससे पूरी की पूरी स्थिति बदल गई। जब तक उसको अपने ऊपर कोई संकट नहीं था, जब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तब तक वो भी खुश था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि मेरे लिए कोई खतरा हो सकता है या ये मेरे लिए मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसके अंदर का चरित्र वो सामने प्रकट हो गया। तो यही भेद है भक्तों के अंदर और जो आश्री प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर। और यहीं पर यह भेद माता देवकी के चरित्र से और कंस के चरित्र से हमको देखने को मिलता है। कंस को जैसे ही लगा कि मेरी मृत्यु, आकाशवाणी, उस पर कितना ट्रस्ट किया जाए, उसने उस पर पूर्ण ट्रस्ट कर लिया और ऐसा होगा ही होगा, और अपनी मृत्यु मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसने पहले तो प्रयास किया कि उस कारण को, जो कारण बनेगा उसको ही हटा देना चाहिए, लेकिन वसुदेव जी के प्रयास से देवकी को किसी तरह से बचा लिया गया। लेकिन फिर भी वह उसका जो असली चरित्र था, एक आसुरिक चरित्र, वो ज्यादा देर तक उसको छुपा नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही यहां पर लिखा है कि जैसे ही असुर जन अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, यही आसुरिक प्रवृत्ति है। वह सही गलत का कोई भेद नहीं करते, क्या करनी है क्या करनी है, किस चीज का हमको नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्रों के अनुसार है, वह इस बात में कोई भेद नहीं करते। वह सिर्फ यह चिंता करते हैं कि मेरा अपना स्वार्थ किसमें है। लेकिन देवकी का चरित्र उसके बिल्कुल विपरीत है। उसके 6 पुत्र मारे जा चुके हैं कंस के द्वारा, लेकिन फिर भी वह कंस को एक तरीके से यहां पर आशीर्वाद दे रही हैं, उसके भले की चिंता कर रही हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, और वह चाहती हैं कि एक निंदनीय कार्य कंस के द्वारा, स्त्री एक नवजात बालिका को मारना एक निंदनीय कार्य जो कंस के द्वारा वह ना हो। पहले ही उसने बहुत सारे पाप करे हैं, लेकिन एक और पाप पूर्ण कार्य करेगा तो उसको और उसकी दशा या उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। देवकी अभी भी उसका भला चाह रही हैं। और दूसरा क्या देवकी के चरित्र के विषय में बताया गया कि हालांकि देवकी, यद्यपि देवकी सुरक्षित थी और उनके अपने पुत्र भी एक रूप से देखा जाए तो सुरक्षित थे गोकुल में, लेकिन वह चिंता कर रही हैं पराई कन्या को बचाने के लिए, उनकी चिंता थी, और ये लिखा है कि यह उनके लिए स्वाभाविक ही था। तो यह स्वभाव है एक भक्त का या जिनके अंदर देवी गुण है, और आसुरी गुण के व्यक्ति का क्या स्वभाव है कि वह सिर्फ अपने और सिर्फ अपने ही स्वार्थ की चिंता करता है। जब तक उसका स्वार्थ सार्थक हो रहा है तब तक वह सही व्यवहार करेगा, लेकिन अगर उसके स्वार्थ में या इंद्रिय भोग में किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी तो उसके अंदर का असली आसुरी चरित्र सामने प्रकट हो जाता है। यह भेद है असुर में और एक भक्त में। तो क्या गुण है, क्या गुण कैसे प्रकट करते हैं, थोड़ा इसके विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है देवी और आसुरी स्वभाव या आसुरी गुण, थोड़ा उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले से लेकर 3 श्लोक में देवी तथा आसुरी स्वभाव के विषय में बताया गया है, और बाकी के इस श्लोक में लगभग 24 इस अध्याय में लगभग 24 श्लोक हैं। दो अंत के 2 श्लोक में सारांश इस चैप्टर का दिया गया है, यानी कि एक तरीके से 19 जो श्लोक हैं उनमें चर्चा हुई है आसुरी स्वभाव या आसुरी गुणों के विषय में। इतना डिटेल में भगवान बता रहे हैं, तो एक कारण यह भी है कि पहले थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आसुरी गुणों के विषय में भी इतनी डिटेल में बताने का कारण है ताकि हम उनको पहचान पाए और कैसे उनसे हम उन ऊपर उठ पाए या अपने अंदर सुधार ला पाए, तो इसलिए इतना डिटेल में भगवान ने चर्चा किया है। तो पहले श्लोक में जो गुण बता गए हैं कुछ देवकी के उससे गुण मैच करते हैं, तो क्या क्या गुण उन्होंने किए दिखाए। वैसे तो भगवान बताते हैं, भगवान ने कहा हे भरतपुर, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक का ज्ञान, अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देव की माता जो यहाँ पर प्रकट कर रही हैं अहिंसा कि वो और क्षमा, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये कुछ मुख्य गुण वह यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। कि और जो कंस आसुरी गुण प्रकट कर रहा है इससे अगले श्लोक में उसके विषय में बताया गया है। दंभोदर्प अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रथापुत, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो कंस यह गुण प्रकट कर रहा है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। प्रभुपाद जी ने इन शब्दों की सारे की व्याख्या इस अपने तात्पर्य में की है, लेकिन पहले ही तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है। आजकल एक्सप्रेस वे का जमाना है, लोग जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं और बहुत तेज गति से अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो अगर नरक की दिशा में तेज गति से जाना है तो इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए या ये गुण। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, ये जो और इस श्लोक में भी बताया है अभिजातस्य उत्पन्न हुए, ये बता रहे हैं कि वह इनके साथ ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं तो ये अशुभ गुण प्रकट होते रहते हैं। अभी कोई कह सकता है कि ये तो अभी जन्म से ही है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो अब क्या किया जाए, ये तो हमारे है ही, तो क्या इनको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जब इनकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन जैसे बता रहे थे कि भक्तों का गुण है और आसुरी का गुण है, यहां पर कंस अब जैसे ही अपनी मृत्यु का उसको एहसास हुआ, उसका पूरा का पूरा जो अंदर का आसुरी व्यक्ति था वो सामने आ गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक और वर्णन आता है जिसमें प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु अपने पिता के द्वारा ही पुत्र को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखा, कोई घृणा का भाव नहीं रखा। यहाँ तक कि वह तो पूर्ण रूप से भगवान के शुद्ध भक्त थे, अपने आप को बचाने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था भगवान उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई भी आसुरी गुण किसी प्रकार से प्रकट नहीं किया। जो भक्त के एक गुण थे, भक्त का चरित्र था, उन्होंने उसको हर स्थिति में मेंटेन रखा। ऐसा नहीं है कि अब उनके ऊपर संकट आ गया तो उन्होंने भी वैसे ही गुण प्रकट करने शुरू कर दिए, नहीं। हिरण्यकश्यपु को अपनी मृत्यु का भय था, और दूसरा कि वह प्रहलाद महाराज की एक छोटी सी बात से शुभ्ध हो गया या उसको गुस्सा आ गया। वह चाहता था कि प्रहलाद महाराज उसका गुणगान करें या उसको भगवान कहकर संबोधित करें, लेकिन प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं किया। तो इसी बात को लेकर वह उनको मारने का प्रयास करने लगा, मारने का संकल्प कर लिया। और यहां पर एक शब्द अभिमान जो बताया कि मान की बहुत इच्छा, अभिमान उसको कहा जाता है, मेरे को अभी के अभी मान मिलना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु को ऐसे ही कि उसके मान में थोड़े से भी कमी रह गई। एक तरीके से सभी लोग, सभी देवतागण, यहाँ उसके राज्य का हर एक व्यक्ति उसकी बात को मानता था। देवता उसके यहाँ आकर झाड़ू लगाते थे, कोई भी उसकी बात को टाल नहीं सकता था। लेकिन एक 5 साल का छोटा बच्चा, जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसको मारने को तैयार हो गया सिर्फ इसी बात पे। यह आसुरी व्यक्ति का स्वभाव। लेकिन उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रहलाद महाराज ने उनकी मृत्यु उनके सामने एक तरीके से मृत्यु है, लेकिन उन्होंने अपने पिता को भी कुछ बुरा भला नहीं कहा। उनको यहाँ तक कि वो दुष्ट भी नहीं कहते थे, उनको कहते थे हे असुरों में श्रेष्ठ, यानी कि अपने वचनों को भी सही रूप से वह उनका इस्तेमाल करते थे। और फिर भगवान उनको बचाने आए। तो भक्त कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और असुर व्यक्ति उसके लिए अपने असली स्वभाव को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो अगर हमको इनसे क्या हम अपने देख सकते हैं कि हमारे अंदर भी कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा ही कभी किसी के प्रति गुस्सा, कभी रोष, कभी ईर्ष्या या घृणा आती है, तो क्या हम उनसे कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे अगर ये बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है? तो यही भगवद गीता में इतने विस्तार से इसके विषय में बताया गया है। किस लिए बताया गया है? सबसे पहले इसी अध्याय में आगे जाके बताया गया है कि असुर व्यक्ति को पता नहीं होता कि क्या सही है या क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो व्यक्ति जिनको ज्ञान है या जिसका स्वभाव दैवी है, उसको ये ज्ञान होता है। तो सबसे पहला कि उसके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, तो वो चुनाव कर सकता है कि मैं कैसा, किस स्थिति में कैसा व्यवहार करूंगा। और दूसरा, उसके पास अवलोकन करने की क्षमता भी होती है, तो वह इनके आधार पर, बताया गया आसुरी और देवी, इनके आधार पर अवलोकन कर सकता है कि क्या मेरा चुनाव सही था या क्या मेरा चुनाव गलत था। और फिर अवलोकन करने के बाद, जैसा कि बहुत प्रभु जी ने अवलोकन करने के बाद मेरे को किया कि कातार नहीं कातर है, तो अपने आप को सुधार कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए, लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है वह सबसे पहले तो उसको ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है गलत है, वो हमेशा गलत का ही चुनाव करता है या सिर्फ उच्च चीज का चुनाव करता है जो उसके स्वार्थ को संतुष्ट करती हो या जो उसको इंद्रिय भोग में लिप्त करती हो, सबसे तो उसका चुनाव भी गलत हो सकता है। दूसरा, वह अवलोकन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको क्या लगता है, अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबसे अच्छा हूं, क्या जरूरत है। और जब अवलोकन ही नहीं किया तो सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता, जिस प्रकार से हम दुर्योधन के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि उसने कभी भी सुधार या पश्चाताप की कोई बातचीत नहीं कही। महाभारत के युद्ध के अंत में जब वह एक तरह से मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ था, भीम से युद्ध के बाद अश्वत्थामा उससे मिलने आए, तो दुर्योधन उनको कहता है कि आप मेरी पत्नी का संग कीजिए, संतान की उत्पत्ति कीजिए और पांडवों से मेरी मृत्यु का बदला लीजिए। उसको अभी भी अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था। हालांकि और इससे पहले जो प्रसंग आता है कि पूरा जीवन भर उसने क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से अपना जीवन बिताया और पांडवों के प्रति ऐसा ही भाव प्रकट किया। दूसरी तरफ वह दुर्योधन पांडवों को मारना भी चाहता था। दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, जिनका इनके इनसे बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत व्यवहार। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि क्यों ना जंगल में जाकर, वन में जाकर ही इनका वध कर देना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी सैन्य शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, इनको हम मार सकते हैं। लेकिन वह जिस स्थान पर पांडव रह रहे थे वहां पर कुछ गंधर्व भी उपस्थित थे। दुर्योधन वहां पर गया अपनी सेना के साथ, उसका युद्ध गंधर्वों के साथ हो गया और गंधर्व उस पर हावी पड़ गए और गंधर्वों ने कौरवों को एक तरीके से परास्त कर दिया। दुर्योधन को बंदी बना लिया, उसके भाइयों को बंदी बना लिया और उनकी पत्नियों को भी बंदी बना लिया और अपने साथ ले जाने लगे। तो उस स्थान पर कौरव के कुछ लीडर्स या नेता जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं कि आप इनको बचा लीजिए। तो भीम भी वहां पर उपस्थित होते हैं। सबसे पहले तो भीम कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, हमारा कार्य इन गंधर्वों ने कर दिया सरलता पूर्वक, अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर उनको समझाते हैं और युधिष्ठिर जो बात कहते हैं वो उनके स्वभाव या उनके चरित्र को पूर्ण रूप से प्रकट करती है। युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए कहते हैं कि ये क्रूरता का समय नहीं है, आप इन लोगों से गुस्से में बातें क्यों कर रहे हो जो हमारी शरण लेने के लिए आए हैं, हमें अपने आपसी मनमुटाव को अपने स्वाभिमान के बीच में नहीं आने देना चाहिए। आपस में हो सकता है कि हम 5 पांडव और वो 100 कौरव हैं, लेकिन औरों के लिए हम 105 हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो युधिष्ठिर जी वहां पर कहते हैं कि दुष्ट गंधर्वों ने ये जानते हुए भी कि हम यहां पर उपस्थित हैं, हमारे परिवार की स्त्रियों का अपमान किया है, इसलिए उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बात युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। दुर्योधन को छोड़ाने की बात कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, जिनको दुर्योधन मारने के लिए वहां पर आया था, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने अपमान किया है तो उसकी पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरा, वह यह जानते थे कि स्त्रियों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है या उचित है, इसीलिए उन्होंने पांडवों को भेजा और बोला मैं अभी, क्योंकि यज्ञ में लगाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, लेकिन बाकी भाइयों को भेजा और दुर्योधन को छुड़ा लिया गया। और युधिष्ठिर का एक और स्वभाव जो कि वह हमेशा किसी से शत्रुता नहीं रखते थे, हमेशा उसको क्षमा कर देना उनका स्वभाव था। वह किसी से ईर्ष्या, द्वेष या घृणा पाल कर नहीं रखते थे। दूसरी तरह दुर्योधन ने अपना पूरा जीवन इसी उससे बिताया। तो ये भक्त का स्वभाव है कि कैसी भी समस्या हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वह अपने दैवी स्वभाव को नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी प्रश्न यही आता है कि अगर हम, जैसा कि श्लोक में बताया, अगर हम कुछ स्वभाव ऐसे आसुरी स्वभाव के साथ हमारा अगर जन्म ही हुआ है तो हम उससे कैसे ऊपर उठ पाएंगे। तो इसके लिए जैसे बताया और इससे पहले वाले श्लोक में जो महत्वपूर्ण पहले श्लोक में भगवद्गीता के पहले श्लोक में जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंतिम लाइन इस प्रकार से है कि सारांश है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। यानी कि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और अभ्यास के द्वारा इन गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो जैसे कि अभ्यास के लिए, अगर अभ्यास की हम चर्चा करते हैं तो अभ्यास कितना आवश्यक है। एक बार एक युवक अवस्था, जिसकी अब तुरंत ही कुछ समय बाद विवाह होने वाला था, वो एक मैरिज काउंसलर के पास गया, और आजकल प्री मैरिटल ट्रेनिंग इसका रिवाज चल रहा है, तो वो भी प्री मैरिटल ट्रेनिंग लेने के लिए उस काउंसलर के पास गया। उसने उनका कोर्स फी वगैरह, कोर्स स्ट्रक्चर देखा, पैसे वैसे सब जमा करा दिए, और उसके बाद मैरिज काउंसलर से मिला और उनसे बताया कि कुछ समय बाद मेरा विवाह होने वाला है, आप मुझको कुछ प्री मैरिटल ट्रेनिंग दीजिए, कुछ मुझको बताइए कि कैसे मैं अपने विवाह को सुचारू रूप से चला सकता हूं। तो मैरिज काउंसिल ने उनको बोला, ये सब तो ठीक है, पहले तुम क्षमा मांगो। बोले क्षमा मांगो, किस बात की? बोले तुम क्षमा मांगो, बात तभी आगे बढ़ पाएगी। बोले आपसे पहली बार मिल रहा हूं, आपको जानता नहीं, क्षमा किस बात की मांगू, मैंने कोई गलती भी नहीं की। बोले क्षमा नहीं मांगोगे तो काम नहीं होगा। अरे कैसे व्यक्ति हो आप? फिर वो सोचता है कि अगर मैं इनसे इनकी बात नहीं मानूंगा तो हो सकता है कि ये मुझसे नाराज हो जाएं, या फिर मेरे को ट्रेनिंग देने से ही मना कर दें। अब मैं फीस तो जमा करा ही चुका हूं, तो क्या करता हूं, क्षमा मांग ही लेता हूं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, अब बताओ क्या करना है। बोले यही है सीख नंबर एक, कि क्षमा मांगने के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपको अपने रिश्तों को, संबंधों को सही रूप से निभाना है, उनको सुचारू रूप से चलाना है, तो आपको क्षमा मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी गलती है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको लगता है क्षमा मांगकर स्थिति सामान्य हो जाएगी, या कम से कम आप इस स्तर पे आ जाओगे कि एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, तो क्षमा मांगने में कोई संकोच मत करना। तो यह है सीख नंबर एक। तो यह है एक, अगर हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। यस, उसको भी हमेशा क्षमा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और विशेषकर उस स्थिति में जब उनसे क्षमा मांगी जा रही है। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था, दुर्योधन ने उनसे कभी क्षमा मांगी नहीं, लेकिन कभी उन्होंने उनसे ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखा, धर्म के नियमों का पालन किया, उनसे युद्ध भी किया, वो अलग बात है, लेकिन अपने हृदय के अंदर कोई ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, जैसे अगर संबंधों की अगर चर्चा करते करना सिर्फ संबंधों की चर्चा करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि एक व्यक्ति, वो अगर उसको लगता है कि गलती हुई नहीं हुई है, लेकिन क्षमा मांगने से स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो क्षमा मांगने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति, वह उसको ये देखना चाहिए कि अगर यह व्यक्ति क्षमा मांग रहे तो उसको तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। और यह बहुत आवश्यक है उसके अपने लिए बहुत आवश्यक है। मैंने एक कोट आज सुबह मुझको प्राप्त हुआ, और ये इसी से रिलेटेड था, मैं इसको शेयर करना चाहता हूं, इससे बहुत रेलेवेंट मुझको लगता है। और इस कोट का टॉपिक था, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में थोड़ा सा, यू इंजर योरसेल्फ, यानी कि आप अपने आप को आघात पहुंचा रहे हैं। क्या करके? योर रिफ्यूजल टू फॉरगिव इज अ सब्सिक्वेंट इंजरी टू इन्फ्लिक्ट ऑन योरसेल्फ, यानी कि अगर आप दूसरे को क्षमा करने से मना कर देते हैं, तो आप अपने आप को और आघात पहुंचा रहे हैं, एंड कैन इवन बी मोर पेनफुल देन द इनिशियल हर्ट, और आपको जो पहले आघात पहुंचा था उससे और ज्यादा दर्दनाक और असहनीय हो सकता है अगर आपने दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। इट इज अनफॉर्चुनेट हाउ वी अननेसेसरी हर्ट आर सेल्स, और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिना किसी जरूरत के हम अपने आप को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, उससे अंदर ही अंदर हम जल रहे हैं। अगर अंदर हमारे अंदर अग्नि है तो वो हमको ही जलाएगी। और दूसरी एक बहुत सिंपल लाइन है, फॉरगिव बिकॉज यू डिजर्व इट, हमें दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि हम इसके, कैसे कहना चाहिए कि हम इसके काबिल हैं, या हम, यह हमारे लिए ही है। यानी दूसरे को क्षमा करके हम अपने ऊपर ही एक तरीके से एहसान कर रहे हैं, और आप इसके हकदार हैं। यस यू डिजर्व इट, आप इसके हकदार हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो मुक्ति मिलेगी वो मुझको मुक्ति मिलेगी। अब कोई कह सकता है कि हमको तो क्षमा करने की अगर आदत नहीं है या इसका, तो क्या करना चाहिए हमको? क्षमा, जैसे कोई व्यक्ति को क्षमा मांगने का आदि नहीं है और दूसरे को क्षमा करने की आदत नहीं है, तो इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से किसी भी गुण को विकसित किया जा सकता है। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि जैसा कि वो भागवतम के पांचवें स्कंद में एक श्लोक आता है, यस्याति भक्तिर भगवते अकिंचना सर्वे गुणस्तत समासुते सरा हर अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरेथन रथेन अस्ति धावतो भई। क्योंकि अब हमने भक्ति करना शुरू कर दिया है और हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप भी करते हैं, तो थोड़े ही समय में ये देवी गुण स्वाभाविक रूप से अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। तो यश ये इसका ये अर्थ है कि वह जो भक्ति कर के प्रयास के मार्ग पर अग्रसर है उसके अंदर वह देवी गुण विकसित हो जाएंगे। लेकिन इसका यह अर्थ या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में जो जय विजय का एक प्रसंग आता है, उसके एक श्लोक में तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक के 5वें वर्ष में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। तो यानी कि उसको देखना चाहिए, हमेशा अवलोकन करते रहना चाहिए कि मेरा अभी क्या स्तर है, और उन स्तरों उस स्तर का अवलोकन करने के पश्चात उसमें किस प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें आवश्यक सुधार लाना चाहिए। अब सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? सुधार लाने के लिए सबसे पहले तो उसको ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उसको यह जानना चाहिए यह कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं, और इसके लिए वो हो सकता है एक रोल मॉडल, एक आदर्श चरित्र को अपने जीवन में उदाहरण के रूप में उनका हमेशा चिंतन कर सकता है। और कैसी भी स्थिति आती है, चाहे वो बहुत डिफिकल्ट बहुत कष्टमय स्थिति हो, तो उसको ऐसा चिंतन करना चाहिए कि उस स्थिति में वह भक्त कैसा व्यवहार करेंगे। हमेशा उनका चिंतन करते रहना चाहिए कि उनका देखना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसी स्थिति आई होती तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया होता, या शास्त्रों में जो हमें उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण को बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, उनका अध्ययन करते रहना चाहिए, और किस प्रकार से भक्तों ने विपरीत स्थिति में भी विपरीत परिस्थितियों में भी एक आदर्श भक्त का व्यवहार प्रस्तुत किया है। इससे हमें मदद मिलेगी कि हम भी अपने जीवन में वह व्यवहार प्रकट करने का प्रयास कर सकते हैं, और ये अभ्यास से ही हम सफल हो पाएंगे। कहते हैं ना, अभ्यास सफलता की कुंजी है। तो अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास करके ही, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे गर्ग मुनि, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मेरे को ये दंडवत प्रणाम करने का मेरी इच्छा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा आप प्रणाम करते रहिए, एक दिन आपके मन में अच्छी तरह से इच्छा भी हो जाएगी। तो यही है, हमको हो सकता है कि अगर हमारे मन में भी ये इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही हो तो हमको सही व्यवहार करते रहना चाहिए और हमारे अंदर वो इच्छा भी होगी, और धीरे धीरे उस प्रयास से, उसका प्रयास करते हुए, अगर इंग्लिश में बोले तो फेक इट टिल यू मेक इट, कि हमको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहरी दिखावटी नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि बाहरी रूप से ही कर रहे हैं, अंदर कुछ और भाव करते हैं, अंदर से भी इच्छा है कि हम उस स्तर पे आ जाएं और वह हमारा स्वभाव बन जाए, और उसको हम बाहरी रूप से भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसका अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे और इन गुणों को विकसित कर पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप किसी का कोई प्रश्न है तो एक मिनट का समय है, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी, प्रभु जी कुछ है? जी प्रभु जी, माइक माइक, हाँ
हरे कृष्णा। गलत काम, हरे कृष्णा, उसको अज्ञान ज्ञान नहीं होता,
ज्ञान नहीं होता।
हाँ, वो अज्ञान के कारण काम करते हैं। मगर शास्त्र में हम देखते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा पंडित कोई नहीं था। जो भगवान राम भी जब सीता मैया को चोरी करके ले गए थे, तब भी उनको रामेश्वर में मूर्ति स्थापना कर ले रावण के ही निमंत्रण देकर लाए थे। इतना बड़ा विद्वान था, और कंस भी विद्वान थे, ऐसा नहीं को जानते नहीं थे। तो ऐसा कैसे कि ये अज्ञानी, ये ज्ञानी तो थे फिर भी ऐसा काम किया, किस कारण से?
जैसा कि हमने चर्चा किया कि ज्ञान का सही इस्तेमाल तब तक वह व्यक्ति, जैसे आपने इन बताया गया, जब तक उनके अपना स्वार्थ डिस्टर्ब नहीं हो रहा था तब तक तो वह उसका पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका अपना स्वार्थ या उनको लगा कि हमारे इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो वो उस ज्ञान को भी उसका सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनको सही, उनको ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यपु को भी ज्ञान था, हिरण्यकश्यपु का भी एक बहुत बड़ा अध्याय है लेकिन जिसमें वो चर्चा करते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वह ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसका ज्ञान को क्या कह सकते हैं, विज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। एक तरीके से जो सही ज्ञान है वो उसका ज्ञान सीमित रह गया, या उस ज्ञान, वो ज्ञान वेस्ट हो गया क्योंकि उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जब उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था।
यही तो जानना था क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक ज्ञानी व्यक्ति ही इस्तेमाल किस कारण से नहीं कर पाते, क्या कमियां होता है उसमें?
प्रभु, जो भगवत गीता से मेरे को याद आ रहा है, वो बताते हैं भगवत गीता में श्लोक, आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन चा, कि ज्ञानियों का ज्ञान भी ढक लेता है, काम इतने शक्तिशाली है। और इसी कारण से, और जो फिर अपने काम की इच्छा पूर्ति करना चाहता है वो अग्नि में घी डाल रहा है, और फिर वो इतनी भयानक अग्नि बन जाती है कि उसमें उसका ज्ञान ही जल जाता है।
यही उत्तर सुनना चाहता था।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।